नमस्कार, आज हम 2025 में जावास्क्रिप्ट की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं और खास तौर पर ये जो उलझन है ना कि कौन सा फ्रेमवर्क चुने। हमारे पास एक लेख है जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क की तुलना 2025, उससे कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं। रिएक्ट, एंगुलर और व्यू, यही तीन बड़े नाम हैं। तो इरादा ये है कि आज हम इन तीनों की, मतलब अभी क्या हालत है, क्या इनकी ताकतें हैं, कहाँ थोड़ी कमजोरियां हैं और मार्केट में इनकी जगह कहाँ है, इसे समझें, ताकि कोई अगर सीख रहा है तो उसे थोड़ी आसानी हो फैसला लेने में। अच्छा, तो पहले एक नज़र डालते हैं कि कौन कहाँ खड़ा है बाजार में। रिएक्ट, वो तो करीब 40% मार्केट शेयर के साथ सबसे आगे है।
हाँ, ये काफी दिलचस्प है। ये सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं दिखाता, बल्कि ये भी कि कैसे फ्रंट एंड में मॉड्यूलर तरीके से काम करने का चलन बढ़ रहा है।
सही बात। और एंगुलर, वो करीब 22% पर है, खासकर बड़ी कंपनियों में, एंटरप्राइज लेवल पर काफी टिका हुआ है।
बिल्कुल। और व्यू भी पीछे नहीं है, लगभग 18% पर है और एशिया में तो ये काफी ज्यादा पॉपुलर है।
तो चलिए अब जरा एक एक करके इनको समझते हैं। रिएक्ट से शुरू करते हैं। इसका नाम सुनते ही पहली चीज आती है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब लचीलापन।
हाँ बिल्कुल।
फेसबुक, नेटफ्लिक्स ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां इस पे काम कर रही हैं। इसका जो कंपोनेंट आधारित आर्किटेक्चर है और वर्चुअल डॉम,
वो तो कमाल का है।
हाँ वाकई, सिंगल पेज एप्लीकेशंस के लिए तो ये बहुत एफिशिएंट है। और इसकी ताकतें, मतलब क्या है मेन पॉइंट्स? एक तो बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, फिर नौकरियां भी इसमें काफी हैं।
जी हाँ, जॉब मार्केट तो बहुत स्ट्रांग है इसका और कम्युनिटी सपोर्ट भी जबरदस्त है। लेकिन इस फ्लेक्सिबिलिटी की ना कीमत भी होती है।
अच्छा, कैसे?
देखिए, इतने सारे ऑप्शंस, इतनी लाइब्रेरीज, जो नया सीख रहा है वो थोड़ा मतलब कंफ्यूज हो सकता है।
हाँ, ये बात तो है।
और इकोसिस्टम भी बहुत तेजी से बदलता है, आपको लगातार अपडेट रहना पड़ता है।
हाँ, ये तो है।
और अगर ऐप थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो शुरुआती सेटअप थोड़ा ज्यादा लग सकता है, पर हाँ, रिएक्ट 19 में जो सर्वर कंपोनेंट्स आए हैं,
हाँ, सुना है मैंने,
वो परफॉर्मेंस और सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए इसे और भी आकर्षक बना रहे हैं।
अच्छा, तो रिएक्ट हुआ फ्लेक्सिबिलिटी का राजा, अब आते हैं एंगुलर पर। ये बिल्कुल अलग है, यहाँ बात है स्ट्रक्चर की, एक पूरे पैकेज की।
हाँ, एक कंप्लीट फ्रेमवर्क।
गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां ऐसे इस्तेमाल करती हैं बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए खासतौर पर।
जी,
ये एक तरह से सब कुछ शामिल वाला सौदा है। राउटिंग, HTTP क्लाइंट सब पहले से इसमें,
और टाइपस्क्रिप्ट पर आधारित है जो बड़े प्रोजेक्ट्स में काफी मदद करता है।
और इसका CLI, कमांड लाइन इंटरफेस,
वो तो बहुत पावरफुल है। वो सिर्फ एक टूल नहीं है, वो असल में कोड बनाने और प्रोजेक्ट मैनेज करने का एक स्टैंडर्ड तरीका देता है।
अच्छा,
इससे बड़ी टीमों में ना कंसिस्टेंसी बनी रहती है। लेकिन इसका लर्निंग कर्व थोड़ा मुश्किल है, शुरू में ज्यादा मेहनत लगती है।
हाँ, ये मैंने भी सुना है।
और बंडल साइज भी इसका अक्सर रिएक्ट या व्यू से बड़ा होता है, तो शुरुआती लोड टाइम पर असर पड़ सकता है। पर एंगुलर 18 में सिग्नल्स जैसी चीजें आई हैं।
सिग्नल्स, वो क्या है?
वो बेसिकली स्टेट मैनेजमेंट को और एफिशिएंट बनाने का और परफॉर्मेंस सुधारने का एक नया तरीका है। तो ये बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए वाकई बहुत कारगर है, पर छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए शायद थोड़ा, क्या कहते हैं, ओवरकिल हो।
ठीक है, और फिर आता है व्यू, इन दोनों के बीच में कहीं।
हाँ, कह सकते हैं एक अच्छा संतुलन बनाता है ये।
इसे प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क कहते हैं,
मतलब आप धीरे धीरे इसे अपना सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से।
बिल्कुल।
और ये अक्सर सुनने में आता है कि सीखने में सबसे आसान है।
हाँ, ये बात काफी हद तक सही है। इसका लर्निंग कर्व वाकई काफी दोस्ताना है, छोटे से मीडियम साइज के प्रोजेक्ट्स के लिए बढ़िया माना जाता है।
इसका डॉक्यूमेंटेशन भी कहते हैं बहुत अच्छा है।
जी हाँ, डॉक्यूमेंटेशन तो इसका शानदार है और सिंटैक्स भी HTML जैसा लगता है, तो फ्रंट एंड वालों को जल्दी समझ आता है। परफॉर्मेंस भी अच्छी है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी।
क्या?
रिएक्ट के मुकाबले इसका इकोसिस्टम और जॉब मार्केट वो अभी भी थोड़ा छोटा है, खासकर एशिया के बाहर।
अच्छा,
पर व्यू 3 अब काफी मैच्योर हो गया है और उसमें जो कंपोजिशन API आया है उसने इसे और फ्लेक्सिबल बना दिया है। रिएक्ट जैसी चॉइस की उलझन भी नहीं होती, तो ये उन लोगों के लिए बढ़िया है जो एंगुलर जैसा थोड़ा स्ट्रक्चर चाहते हैं और रिएक्ट जैसी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी, एक तरह का मिडिल ग्राउंड।
तो अगर सीखने के हिसाब से देखें, क्या क्रम बनता है? व्यू सबसे जल्दी?
हाँ, लगता तो यही है।
फिर रिएक्ट?
हाँ,
और एंगुलर शायद सबसे ज्यादा टाइम लेता है।
लेख के हिसाब से व्यू में शायद 2 से 4 हफ्ते लग सकते हैं प्रोडक्टिव होने में।
रिएक्ट में करीब 3 से 6 हफ्ते।
और एंगुलर?
एंगुलर में 6 से 10 हफ्ते भी लग सकते हैं।
अच्छा, और जॉब मार्केट और सैलरी के लिहाज से?
देखिए, जॉब्स के मामले में तो रिएक्ट ही आगे है, खासकर अमेरिका और बड़े टेक हब्स में। एंगुलर की पकड़ यूरोप और एंटरप्राइज नौकरियों में ज्यादा मजबूत है।
और व्यू?
व्यू जैसा हमने कहा, एशिया में बहुत पॉपुलर है, तो वहाँ मौके अच्छे हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए, तीनों ही काफी केपेबल है आजकल। पर हाँ, व्यू का जो शुरुआती बंडल साइज है वो आमतौर पर सबसे कम होता है, तो कुछ मामलों में वो थोड़ा तेज हो सकता है।
तो फिर चुनाव कैसे करें? मतलब अगर किसी को जॉब सिक्योरिटी और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए
तो शायद रिएक्ट। हाँ,
और अगर कोई बड़ी कंपनी में है या उसे एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीका पसंद है
तो एंगुलर एक सेफ बेट है।
और जो बिल्कुल नए हैं या जल्दी कुछ बनाना चाहते हैं,
उनके लिए व्यू एक शानदार शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल, पर सबसे जरूरी बात जो मैं हमेशा कहती हूँ,
क्या है वो?
कि फ्रेमवर्क कोई भी चुने, पहले जावास्क्रिप्ट की जो बुनियाद है वो मजबूत होनी चाहिए।
हाँ, ये तो है।
कंपोनेंट कैसे काम करते हैं, स्टेट मैनेजमेंट क्या बला है, टेस्टिंग क्यों जरूरी है, ये कॉन्सेप्ट समझने जरूरी हैं।
सही कहा।
क्योंकि ये स्किल्स हर फ्रेमवर्क में काम आएंगे। फ्रेमवर्क तो आते जाते रहते हैं, पर ये फंडामेंटल्स टिके रहते हैं।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि 2025 में रिएक्ट, एंगुलर या व्यू, तीनों ही अच्छे विकल्प हैं।
हाँ, कोई गलत चॉइस नहीं है इनमें से।
रिएक्ट करियर के लिए शायद सबसे सेफ, एंगुलर बड़े सिस्टम्स के लिए भरोसेमंद, और व्यू सीखने और तेजी से काम शुरू करने के लिए लाजवाब। बस जरूरी है कि शुरुआत की जाए।
और यहाँ एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए।
हाँ, बताइए।
ये जो नई चीजें आ रही हैं, जैसे सर्वर कंपोनेंट्स, जो रिएक्ट में आ गए हैं और शायद आगे और फ्रेमवर्क्स में भी आए, क्या ये अगले 5 सालों में फ्रंट एंड डेवलपमेंट का पूरा नजारा ही बदल देंगी?
ये वाकई सोचने वाली बात है, देखना दिलचस्प होगा।